पृष्ठ संख्या 112। व्यापार से वित्तीय मांगों की तरफ परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण यूरोप के राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति के द्वारा अधिशेष पूंजी का विकास शुरू होना था। विकास का यही दौर अमेरिका में देखने को मिलता है। पूंजीपति और व्यापारिक वर्गों ने अधिशेष पूंजी का निवेश करने के लिए अपने राष्ट्रों के बाहर उपनिवेशों की तलाश शुरू कर दी। उपनिवेशों में लाभ प्राप्त करने के साधन अधिक थे, क्योंकि वहां के कर कानून विकसित राष्ट्रों से काफी अलग थे। कच्चे माल की कमी और कम उत्पादन के कारण उन्हें अपने श्रमिकों को अधिक वेतन देना पड़ता था। दूसरी ओर चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करके सस्ती कीमतों पर कच्चा माल और कम वेतन पर श्रमिक प्राप्त किए जा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय राष्ट्र चीन का पूरा लाभ उठाने के लिए आपस में मुकाबला करने लगे। इस छीना झपटी को चीन में साम्राज्यवाद का प्रमुख कारण और प्रभाव बताया गया। इस छीना झपटी का परिणाम यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष की शुरुआत थी, जिसे समाप्त करने के लिए पहले अमेरिका ने और फिर ब्रिटेन ने अपने सुझाव पेश किए थे। अमेरिका ने मुक्त द्वार नीति ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसके आधार पर वह शक्ति संतुलन को कायम करके तटस्थता की नीति अपनाते हुए चाहता था कि संघर्षों के स्थान पर सभी शक्तियों द्वारा चीन का उपभोग समानता से किया जाए। इसके अंतर्गत अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि मंचूरिया के रेलवे मार्ग को रूस या जापान के नियंत्रण में न रखकर उसे अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग बनाकर सभी विदेशी शक्तियों द्वारा संचालित किया जाए। पृष्ठ संख्या 113। 1908 ईस्वी के बाद, जब विदेशी ताकतों को इस बात का आभास हुआ कि चीन जैसे विशाल साम्राज्य पर केवल एक विदेशी शक्ति शासन नहीं कर सकती, तब धीरे धीरे चीन की कमजोर केंद्रीय सत्ता का उपयोग करते हुए विदेशी ताकतों ने वित्तीय सहयोग की नीति अपनाकर अपने अपने रियायती क्षेत्रों पर विदेशी पूंजियों के सहारे चीन में वित्तीय साम्राज्यवाद का दूसरा दौर शुरू कर दिया। इसमें रेलगाड़ी, बैंक, रेल मार्गों और कारखानों का निर्माण करना शामिल था। प्रत्येक रियायती क्षेत्र स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। इसी प्रक्रिया को चीन का विभाजन कहते हैं। रियायत देने का अर्थ यह हुआ कि किसी विदेशी राष्ट्र को उस क्षेत्र के सभी अधिकार दे दिए गए हों, परंतु जो अधिकार एक विदेशी शक्ति को प्राप्त थे, दूसरा राष्ट्र उनका उपयोग नहीं कर सकता था। इसी को इतिहासकार वित्त साम्राज्यवाद का राजनीतिक स्वरूप बताते हैं। रियायती क्षेत्रों को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका रेल मार्गों का निर्माण था। जब तक विदेशी प्राथमिक शक्ति का उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक होता था, तब तक वह केवल रियायती क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में इसलिए रखते थे कि रेल मार्गों को निर्मित करने वाली कंपनी अपने शेयरों या बॉन्डों की पूंजी को सुरक्षित रख सके और मुनाफा प्रदान करवा सके। लेकिन जहां पर उद्देश्य राजनीतिक बन जाता था, वहां पर और रियायतों और नियंत्रणों की मांग की जाती थी। कुल मिलाकर नियंत्रण 5 तरह के होते थे। मांगों का निर्माण करना और निरीक्षण करना, निर्माण से संबंधित माल की खरीदारी करते समय राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना, खर्चे पर नियंत्रण या फिर लेखा परीक्षण को स्थापित करना, रेल मार्गों को तब तक चलाए रखना जब तक ऋण अदा करने का पूर्व दौर समाप्त न हो जाए। अंग, रेल प्रशासन को संभालना और इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारों की प्राप्ति करना। कई बार विदेशी शक्तियां ऋण देने के समय रेल मार्गों को जमानत के रूप में प्रयोग करती थी, चाहे ऊपर दिए गए नियंत्रक अवस्था उसके साथ अनुबंधित की जाती हो या नहीं। नंबर 5, अंग, रेल प्रशासन को संभालना और इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारों की प्राप्ति करना। कई बार विदेशी शक्तियां ऋण देने के समय रेल मार्गों को जमानत के रूप में प्रयोग करती थी, चाहे ऊपर दी गई नियंत्रक व्यवस्था उसके साथ अनुबंधित की जाती हो या नहीं। इसके अलावा चीन की सरकार ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में कर वसूली के अधिकारों को सौंप देती थी, जिसके अंतर्गत ऋण की अदायगी और उससे प्राप्त सूद की मात्रा को निकाला जाता था। राजनीतिक रूप में जिन मुख्य रेल मार्गों का निर्माण और नियंत्रण जिन विदेशी शक्तियों के हाथ में था, उनमें प्रमुख थे रूस और जापान का मंचूरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, शांतुंग प्रांत में जर्मनी का छिंगताओ छिनफ रेल मार्ग तथा एनआन और कुआंगशी प्रांत में फ्रांसीसी रेल मार्ग। यह सभी रेल मार्ग ऊपर व्यक्त किए गए पांचों नियंत्रित प्रणालियों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इनका निर्माण, संचालन और निरीक्षण चीनी सरकार की बजाय विदेशी कंपनियां करती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि रेल मार्गों का निर्माण चीन के आंतरिक प्रांतों से संबंधित स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया था, ताकि कच्चे माल का आयात किया जा सके, उत्पादित माल को इन क्षेत्रों में पटका जा सके तथा साथ ही मुनाफा भी प्राप्त किया जा सके। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी रेल मार्गों का निर्माण किया गया था जहाँ से मुनाफा तो नहीं मिलता था, परंतु उस विदेशी राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि अवश्य होती थी। इसके अलावा रेल मार्गों के आसपास के सभी क्षेत्रों पर निर्माण और विकास की प्रक्रिया में विदेशी राष्ट्र का एकाधिकार स्थापित हो जाता था। यही कारण है कि आधुनिक संचार प्रणाली के होने के बावजूद कई वर्षों तक चीन राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं कर पाया। रेल मार्ग के निर्माण के लिए विदेशी शक्तियों द्वारा अपने अपने अतिरिक्त क्षेत्रों में 1898 से 1908 ईस्वी तक रियायतों को लगातार प्राप्त किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन का निरंतर विभाजन होता चला गया। सभी विदेशी ताकतें अपने सैन्य और राजनीतिक शक्ति के द्वारा तथा चीन सरकार पर नियंत्रण डालकर अपने अधीन अतिरिक्त क्षेत्रों को तथा रियायतों को दूसरी शक्तियों से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती थी। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी ने मिलकर यह समझौता किया कि वह दूसरे के क्षेत्रों का आदर करेंगे, लेकिन रूस ने बेल्जियम की सहायता से कुछ ब्रिटिश प्रांतों में घुसने की कोशिश की। फ्रांस ने भी यांगतज प्रांतों में अपने प्रभाव को जमाने का प्रयत्न किया। जापान ने तो एक बड़े व्यवस्थित रूप से अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरों के अधिकारों के छीनने के लिए चीनी सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वह मंचूरिया के क्षेत्र में सभी रेल मार्गों को अपने नियंत्रण में करके रूसी अधिकारों को समाप्त कर देना चाहता था। मंचूरिया में जापानी व्यापारियों को छोड़कर अन्य विदेशियों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाई जाती है। तालिएन बंदरगाह केवल जापानी माल और जहाज़ों के लिए खुला होता था। इस प्रकार जापान ने अपने उत्पादित माल के लिए चीन में बाजारों का विकास और नियंत्रण करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो वह मुक्त द्वार की नीति के विरुद्ध था, लेकिन जब उसे रूस और जर्मनी के क्षेत्रों में व्यापार करना होता था, तब जापान मुक्त व्यापार का समर्थक हो जाता था। जापान ने अपने अतिरिक्त क्षेत्रों में एक सुचारू प्रशासकीय व्यवस्था कायम करके अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए चीन में स्वयं को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। असमान संधियों, अतिरिक्त क्षेत्रों, रेल मार्गों तथा युद्ध के हार जाने की रकम के कारण चीन पर जो प्रभाव पड़ा था वह इस प्रकार था। चीनी सरकार के पास अपने ही क्षेत्र में रेल विकास कार्यों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार विदेशी शक्तियों के पास था। दूसरा, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए विदेशी शक्तियों ने चीन में सुनियोजित रेलवे प्रणाली का निर्माण न करके चीन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से विभाजित कर दिया। चीन के स्थान पर रेल मार्गों का नियंत्रण, निर्माण और संचालन तथा मुनाफा प्राप्त करने का अधिकार केवल विदेशी राष्ट्रों को था। विदेशी शक्तियों ने अमेरिका की मुक्त द्वार नीति के स्थान पर आपसी सहयोग और दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित रखने की नीति अपनाई थी। वित्तीय सहयोग की भावना का विकास इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी शक्तियों को इस बात का आभास हुआ कि उनके आपसी संघर्ष का लाभ चीन सरकार को मिलता है, इसलिए एक विशाल क्षेत्र में फैले चीनी साम्राज्य का बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था, जिससे वित्त साम्राज्यवाद के विकास में सहयोग मिला। रेल मार्गों के अलावा खनन उद्योगों पर भी विदेशियों की दृष्टि थी। जापान के पास फुशिंग कोयला खान और ब्रिटेन के पास कायलेन खाने थी। दोनों ही चीन की सबसे बड़ी खाने थी और सबसे अधिक मुनाफा प्रदान करने वाले खनन उद्योग भी। 1890 ईस्वी तक बैंकिंग सेक्टर पर ब्रिटेन का एकाधिकार था, लेकिन उसके बाद जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका और नीदरलैंड भी प्रवेश किया था। यह सभी विदेशी बैंक चीन की सरकार को रेलमार्गों के निर्माण, प्रशासन के खर्चे को पूरा करने और युद्ध के हर जाने की रकम को देने के लिए ऋण दिया करते थे। इन्हीं ऋणों के द्वारा चीन का आर्थिक शोषण किया जाता था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद जब चीनी सरकार ने प्रशासन को चलाने के लिए विदेशी शक्तियों से ऋण लिया, तब उसके बदले उन्हें चीन में सीधे पूंजी निवेश करने के अधिकार दिए गए, जिसके कारण चीन का व्यापारिक संतुलन बिगड़ने लगा। आयात और निर्यात कम हो गए। जापान और ब्रिटेन ने अपने कपड़ा उद्योगों के लिए चीन में नए बाजार का निर्माण किया, जिसकी वजह से 1900 से 1914 ईस्वी तक चीन में विदेशियों की कुल आय 77.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर 161 करोड़ डॉलर हो गया। 1931 ईस्वी तक ब्रिटेन, जापान, रूस और अमेरिका के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की मात्रा शंघाई में 46%, मंचूरिया में 36% और बाकी चीन में यह 18% थी। चीन में कुल विदेशी निवेश का 32% हिस्सा ब्रिटेन का था और 35% हिस्सा जापान का। 1895 ईस्वी के पश्चात विदेशी शक्तियों ने चीन में औद्योगिक विकास नहीं होने का लाभ उठाते हुए उसे ऊंचे सूद की दर पर कई ऋण प्रदान किए गए थे। ऋण अदा न कर पाने की स्थिति में विदेशी शक्तियां और अधिक रियायतें प्राप्त करती थी। 1861 से 1938 ईस्वी के बीच कुल ऋणों का 44% चीन की सरकार को, 20% प्रशासन के लिए, 5% औद्योगिक विकास के लिए और 31% रेल मार्गों का निर्माण करने के लिए दिया गया था। रेलवे और औद्योगिक ऋण चीनी सरकार को तभी दिए जाते थे जब विदेशी शक्ति को निर्माण के अधिकार भी दिए गए थे। रेल ऋणों की जमानत दो प्रकार से ली जाती थी, पहला कुल आय से प्राप्त करों की मात्रा से और दूसरा संपूर्ण रेल संपत्ति को बेचने या खरीदने का अधिकार प्राप्त करने से। अन्य ऋणों को देने के लिए नमक कर और व्यापारिक सीमा शुल्कों को जमानत के रूप में प्राप्त किया जाता था। अधिकतर विदेशी पूंजी निवेश उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता था जो विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सके। केवल उन्हीं उद्योगों और संस्थाओं का विकास किया गया था जो व्यापार में सहयोग दे सके, जैसे जहाजरानी उद्योगों की स्थापना। अधिकतर विदेशी पूंजी निवेश उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता था जो विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सके। केवल उन्हीं उद्योगों और संस्थाओं का विकास किया गया था जो व्यापार में सहयोग दे सके, जैसे जहाजरानी उद्योगों की स्थापना, बैंकिंग प्रणाली का उदय या फिर सस्ता कोयला प्राप्त करने के लिए कोयला खानों पर नियंत्रण, यातायात माध्यमों में पूंजी निवेश इसलिए किया गया था ताकि चीन के स्वतंत्र कृषि अर्थव्यवस्था को समाप्त करके सस्ते माल का आयात करने और महंगे उत्पादित माल का निर्यात करने के लिए विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियां इसका उपभोग कर सके। इन सब गतिविधियों का परिणाम यह हुआ कि असंतुलित व्यापार की मांगों की पूर्ति करने के लिए चीन को लगातार विदेशी ऋण लेने पड़े, जो कभी राजनीतिक या फिर कभी आर्थिक दबाव में लिए जाते थे। यह वित्त साम्राज्यवाद चीन की प्रभुसत्ता पर सीधा आक्रमण था, जिसकी वजह से उसकी एकता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी।